ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है बाईस आठ अड़सठ। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी बच्चे जानते हो कि हम पतित तो बन ही गए हैं और हैं तो सभी पापात्मय। अभी पुण्यात्मा बनने के लिए पुकारते हो सभी धर्म वालों को, घर में मुक्ति धाम में जाना है और अभी तुम सारी दुनिया की आत्माओं को समझ गए हो। सभी ऊपर में रहते हैं, जब ऊपर में रहते हैं तो पवित्र हैं, नीचे आते हैं तो अपवित्र बन जाते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर के समझाते हैं। यहाँ जैसी जैसी शूटिंग की है वैसे वैसे ही पतित अथवा पावन बनते हो। कभी ऊपर चढ़ते हो, कभी नीचे उतरते हो। जब ऊंची स्टेज में चढ़ते हो तो तुम्हारी बुद्धि कितनी पवित्र हो जाती है। बाप कहते हैं कि ये ज्ञान सभी धर्म वालों को दे दो, क्योंकि ये सभी धर्म वालों के लिए है। बताओ कि परमपिता परमात्मा एक व्यापी है और ऊंचे ऊंचे में आया हुआ है। ऊंचे ऊंचे बाप जरूर ऊंचे ऊंचे में ही प्रवेश करेंगे। कोई कहेंगे ईश्वर तो सर्वव्यापी है, मैं भी ईश्वर हूं। बोलो ऐसा पाप न करो। बाबा के पास एक जगह से समाचार आया था कि इंदौर में एक आचार्य रजनीश ने प्रवचन में कहा कि मैं आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ करके नमस्कार करता हूं। इनको कुछ भी समझ नहीं है। अब इतने सब परमात्मा है क्या? नमस्कार करने का अर्थ भी नहीं जानते। नमन करना अर्थात अपने को झुकाना। अपनी मन बुद्धि को नीचा समझना और जिसको नमन किया उसकी बुद्धि को ऊंच समझना। नमस्कार का अर्थ भी नहीं समझते हैं। कुछ भी बुद्धि में नहीं है। अब बाप बच्चों को ही समझाते हैं कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी सामने ही है, तुम ही तमो प्रधान बने हो, तुम ही सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान से उतरते उतरते अभी तम प्रधान बने। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वो यहां इस ज्ञान में ज्यादा ठहरते भी नहीं है। सेंटर्स पर भी कोई कितना समय, कोई कितना समय ठहरती है, इसे समझ जाना चाहिए कि इन्होंने भक्ति कम की है इसलिए ठहरते नहीं है। फिर भी यहां एक बार आए हैं तो जाएंगे कहां? क्योंकि दूसरी दुकान तो कोई है ही नहीं, तो ऐसी क्या युक्ति रचे जो कि मनुष्य जल्दी समझ जावे। अभी तो सब तरफ पैगाम देना है और यही कहना है कि बाप को याद करो। परंतु तुम खुद ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर भी कैसे लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना जितना पावन बनेंगे उतने ही तुम्हारे अंदर नॉलेज की धारणा होती जाएगी। और धारणा ज्यादा जो जास्ती होगी, पवित्र जास्ती बनते जावेंगे तो उसकी निशानी है तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। बाईस आठ अड़सठ की वाणी का तीसरा पेज। और तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। समझना चाहिए कि हम तो सबका उद्धार करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन धर्म वालों का या मुस्लिम धर्म वालों का या कोई अमुक वर्ग का उद्धार करने के हम निमित्त हैं। नहीं, तुम तो सारी दुनिया का उद्धार करने वाले बनते हो निमित्त। बाप भी तो आकर सबकी सदगति कर रहे हैं ना। तो जैसे बाप ऊंचे ऊंचे है तुम भी ऊंचे ऊंचे हो। परंतु बाप को तो खुशी और गम की दरकार ही नहीं है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो तुमको भी ऐसी अवस्था बनानी है जो न खुशी में रहो न गम में रहो, एक रस अवस्था हो जानी चाहिए। बाप मिला तो बाकी क्या चाहिए। हाँ, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। क्योंकि यह मत ये श्रीमत सिर्फ आप ही मिलती है। सतयुग में भी ये मत नहीं होगी, क्योंकि वहां भगवान बाप नहीं होगा, देवताओं की मत होगी। देवताओं में तो ज्ञान होता ही नहीं है। देवताएं तो जैसे कि बुद्धू, और तुम तो बुद्धिमान बाप के बच्चे हो अभी। यहां तुमको बेहद का बाप मिला है। जो बेहद की नॉलेज देते हैं, तो तुमको यहां स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप तो कहते हैं कि विलायत में भी जाकर के तुमको समझाना चाहिए, सब धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। क्योंकि सब कहते हैं हे भगवान रहम करो, एक टाइम ऐसा आता है कि नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी ये कहेगी भगवान रहम करो, ब्लिस करो, हमको दुख से लिबरेट करो। अभी तो कोई को कुछ समझ नहीं है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, सबको ये बताना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हुए हो, तुम कोई स्वतंत्र नहीं हो, सब बंधन में हो। कहते भी है कि हमको स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानते हैं। स्व को ही नहीं जानते हैं। जब अपनी आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो आत्मा का तंत्र क्या होता है, परमात्मा तंत्र क्या होता है, ये तो जानेंगे ही कैसे। तो रावण की जेल में सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हुए हैं, क्योंकि बाप ही है एक जो सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है, सदैव ही स्व के तंत्र में रहने वाला है। और आत्माएं तो सब पर तंत्र हो जाती हैं। रावण की जेल में परतंत्र होकर के पाप ही पाप करती रहती है। तो सच्ची सच्ची आजादी कौन सी है, वो लोगों को बताना चाहिए। तुम ये बातें अखबारों में भी डाल सकते हो, यहां रावण के राज्य में आजादी थोड़े ही है, बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए। बोलो, तुम कहते हो कि गांधी जी ने हमको स्वतंत्रता दिलाई, परंतु स्वतंत्रता है कहाँ? यहाँ तो सब बंधन में बंधे हुए हैं, सब रावण की जेल में हैं। आगे चल करके तुम्हारा विलायत में भी आवाज जावेगा, जब वहां लोग समझेंगे तो यहां पर भी झट समझने लग जावेंगे। अभी तो एक दो के ऊपर कितना गुरूर गुरूर करते रहते हैं, तो ये कोई आजादी हुई क्या? आजादी तो तुमको बाप अभी दे रहे हैं, रावण की जेल से आजाद करते हैं। तुम जानते हो कि वहां तो हम बहुत आजाद बहुत धनवान होते हैं, न पांच विकारों का कोई बंधन होता है, न देह का कोई बंधन होता है, प्रकृति के पांच तत्वों का भी कोई बंधन नहीं होता है। हर आत्मा सात्विक प्रकृति के पांच तत्वों से अपने शरीर का निर्वहन करती है, प्रकृति जैसे कि दासी बन जाती है। अभी बाप आए हैं तुमको माया और प्रकृति की जंजीरों से छुड़ाने के लिए, वहां नई दुनिया में तो तुम्हारे ऊपर कोई की नजर नहीं पड़ती थी, पीछे जब द्वापर शुरू हुआ, द्वैतवादी युग शुरू हुआ, तो सभी की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ने लगी। तुम्हारे धन पर, तुम्हारे तन पर सब की नजर पड़ गई। मोहम्मद गजनबी ने आकर के मंदिर लूटा तो तुम्हारी आजादी पूरी ही चली गई। कौन से युग में? हैं? कलयुग के आदि में। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए हो। अभी तुम समझते हो कि हम तो पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। न रावण के बंधन में है और न राम के राज्य में है। हाँ, सच्ची सच्ची आजादी को हमने जान लिया है तो पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो तो आजादी को समझते ही नहीं है, तो ये आजादी की बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वो ही ये स्वतंत्रता पावेंगे और इसको मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितनी बहस करते हैं, जैसे कि जंगली बुद्धि है, समय टाइम तुम्हारा नष्ट करते रहते हैं, तो तुम्हारी दिल नहीं होती है उनसे बात करने की। अभी बाप आकर तुमको सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। तुम जानते हो रावण की परतंत्रता में बहुत दुख है, अपरम अपार दुख है, और बाप के राज्य में हम कितने आजाद होते हैं। आजादी उसको कहा जाता है जबकि हम पवित्र देवता बनते हैं, तब हम रावण के राज्य से छूट जाते हैं। इस बात को कोई भी समझते नहीं है। रावण ही पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी हमारे अंडर में कार्य करती है। तो सच्ची सच्ची आजादी तो तुमको मिलती है जो बाप ही आकर के देते हैं। अभी तो इस पुराने राज्य में गुलामी है, सभी दुखी है, बाप आकर के स्वतंत्र बनाते हैं, स्वाधीन बनाते हैं। स्वाधीन राजा को कहा जाता है और ये राजाई का योग बाप ही आकर के सिखाते हैं। बाकी तो सब मनुष्यात्माएं परतंत्र बनाने वाली हैं। इसलिए आज इस दुनिया में सब दुखी है। तुम तो जानते हो स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं परमपिता परमात्मा की सहयोगी बनती हैं। तो तुमको सच्ची सच्ची स्वतंत्रता मिल जाती है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है, सिर्फ माला फेरते रहते हैं, हर धर्म में माला फेरते हैं, परंतु माला के जिन मणकों को स्मृति में फेरते हैं, बुद्धि रूपी हाथ से घुमाते हैं, वो कौन आत्माएं हैं, क्या करती हैं, कैसे बाप की सहयोगी बनती है, कब बनती है, कोई नहीं जानते है। वो तो समझते हैं कि फॉरेन वालों की गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बन गए, हमें आजादी मिल गई। अब बाप कहते हैं जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक कोई को भी आजाद नहीं कहेंगे, सब परतंत्र हैं। आप पवित्र बने हैं पवित्र बनने का पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं तो फिर जम घंटों की सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कितने होते हैं जम घंट, फिर को घंट क्यों कहा है? कोई घंटे वाले देवी देवताओं की यादगार है या नहीं है? 84 घंटे वाली देवी की यादगार है। बारह बारह के 7 विधर्मी ग्रुप हैं जो मिलकर के 84 जम घंट बनते हैं। ये देवी के घंटे हैं, जिस देवी के लिए गाया हुआ है असुर संहारिणी, ये सजाएं देने के निमित्त बनते हैं। जैसे कोई राजा के राज्य में राजा और रानी कोई सजाएं नहीं देते हैं, वास्तव में सजाएं कौन देता है? राजा रानी सजा देते हैं क्या? सूली पर चढ़ाते हैं कोई को, कौन चढ़ाता है उनको? जल्लाद कहा जाता है। कितनी भयंकर रूपरेखा होती है। तो ये सात विधर्मी ग्रुप हैं जो सजा देने के निमित्त बनते हैं। इनकी जो सजाएं खावेंगे उनके पद भी भ्रष्ट हो जावेंगे। जो ग्रुप का जो जमघंट जिनको जितनी सजाएं देने के निमित्त बनेगा वो उसी ग्रुप में जाकर के कन्वर्ट होगा। और परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में जाकर के भयभीत करने वाली यातनाओं को भोगेगा। अभी बाप तो आए हैं घर ले जाने के लिए, बाप तो प्यार का सागर है, बाप कोई को सजा नहीं देता है। वहां बाप के घर में तो सब आजाद होते हैं, कोई भी किसी के बंधन में नहीं रहता। तो तुम सभी धर्म वालों को समझा सकते हो कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। सब आत्माएं आई हैं मुक्तिधाम से पार्ट बजाने के लिए। मुक्तिधाम से फिर नंबरवार जन्म लेकर के सुखधाम से दुखधाम में आवेंगी। पहले सुखधाम फिर दुखधाम। हर आत्मा को इस सरणी से गुजरना पड़ता है। मुक्तिधाम, मुक्तिधाम से सुखधाम, सुखधाम से दुखधाम। अभी इस दुखधाम में कोई समझते भी नहीं है कि हम कितने गुलाम बन गए हैं। अभी बाप कहते हैं कि तुम तो मेरी संतान हो, मैं तो सदा शिव हूं, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला स्वतंत्र हूं, तो मेरी संतान भी कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए या परतंत्र होनी चाहिए? जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। तो बाप कहते हैं तुम रावण की संतान नहीं हो, मैं तुमको राज्य भाग दे करके गया था। उस समय तुम अपने राज्य में कितने आजाद थे, अब फिर से वहां पर जाने के लिए पावन बनना है। ये पावन बनने की नॉलेज जन्म जन्मांतर के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। तुम कितने धनवान बन जाते हो। वहां नई दुनिया में तो तुमको पैसों की चिंता ही नहीं होगी, और यहां इस दुनिया में तो पैसे नहीं है तो कमाने की कितनी चिंता रहती है। कमाई हो भी जाए तो उसको थमाने की कितनी चिंता रहती है, और थमाई हुई कमाई कहीं चली जाए तो कितनी चिंता बढ़ जाती है। वहां तो तुमको कोई भी पैसों की चिंता नहीं रहेगी, बल गरीब हो तो भी पैसे की कोई चिंता नहीं, सब सुखी रहते हैं। बाकी राजधानी में ऊंच और नीच पद तो होते हैं, जैसे कि कोई परिवार होता है भारतीय परिवार, देवी देवता सनातन धर्म का प्राय है लोप होने वाला परिवार, ऊंचे के ऊंचे पद भी होते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको सबकी आज्ञा माननी पड़ती है। तो क्या वो दुखी होते हैं? जो परिवार में छोटे बच्चे होते हैं जिनको सबकी आज्ञा माननी पड़ती है वो दुखी होते हैं क्या? हैं? कि हमारा इतना नीच पद है? नहीं, ऐसे ही भगवान बाप आकर जिस देवी देवता सनातन धर्म की दुनिया स्थापन करते हैं वहां ऊंच और नीच पद तो होते हैं परंतु कोई दुखी नहीं होता है। सूर्यवंशी राजधानी, चंद्रवंशी राजधानी, उसमें जाने वाले बहुत थोड़े बनेंगे। जो जितना मेहनत करेगा उतना पद पावेगा। तो तुम बच्चे तो सभी धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, तो विलायत वालों को भी समझाना है कि तुम सब भाई भाई हो, सब शांति धाम में रहते थे, अभी रावण राज्य में हो, अभी फिर से राम राज्य में जाने का हम तुमको रास्ता बताते हैं। परंतु सब तो राम राज्य में नहीं आवेंगे, कहां आवेंगे? सब कहां आवेंगे? सब शांति धाम के वासी तो होंगे लेकिन राम राज्य के वासी नहीं होंगे। बाप कहते हैं फिर भी अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे लिबरेटर कहते हो, परंतु ये नहीं समझते हैं कि कैसे लिबरेट करते हैं। जैसे बच्चे कहीं बाप के साथ बाहर जाते हैं और कहीं पर मुझ पड़ते हैं तो कहेंगे ना कि बाबा हमें अपने घर ले चलो। जैसे कि तुम बच्चे फाग होने के कारण जंगल में मुझ गए तो रास्ते का पता ही नहीं पड़ा, बाप की उंगली छूट जाती है ना, तो उन बच्चों को कहना पड़े कि हमको रास्ता बताओ। बेहद के बाप को भी कहते हैं कि बाबा अब हमको लिबरेट करो, आप आगे आगे चलो तो हम आपके पीछे पीछे आवेंगे। سوائے باپ کے اور تو کوئی بھی راستہ نہیں بتا سکتا. اس لیے جاڑ کے چتر میں اوپر کیا دکھایا ہے, دکھایا ہے کہ نراکاری باپ اور اس کے ساتھ منشیہ سرشتی کا ساکاری باپ اور اس کے پیچھے پیچھے سارے آتما روپی بچے فالو کرتے ہیں. جو فالو نہیں کرتے ہیں ان کا ماتھا کہیں نہ کہیں ٹکراتا رہتا ہے. کتنی کھٹ پٹ کرتے ہیں, ابھی بھی دیکھو کتنے تیرتھوں پر دھکے کھاتے رہتے ہیں. کہاں دھکے کھاتے ہیں, نام کیا دیا, تیرتھ. تیر مانے کنارا, تھا مانے استھان. منشیوں کے بنائے ہوئے الپکال کے تیرتھ ہیں, ان کناروں پر ڈھکے کھاتے رہتے ہیں, پرنتو وہاں بھگوان انہیں نہیں ملتا ہے. پھر دوسرے تیرتھوں پر بھاگتے ہیں, مندروں میں بھاگتے ہیں, مسجدوں میں بھاگتے ہیں, گرودواروں میں بھاگتے ہیں, جنم جنمانتر بھاگتے رہتے ہیں. جب کہیں ملتا ہی نہیں ہے تو اس کو ڈھونڈیں گے بھی کہاں. بھگوان کیا چیز ہوتی ہے وہ تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. کیا کہہ دیتے ہیں, نہیں جانتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں بھگوان تو سرو ویاپی ہے. پھر بھی یاترا کرتے ہیں بھگوان سے ملنے کے لیے. ارے یہاں بھگوان کہاں ہے؟ اگر سرو ویاپی ہے تو پھر ملے گا کیسے؟ کتنا اجیان ہے. اب اس گھور اجیان اندھیرے میں کون لے کر کے آیا, کون آیا ہے؟ یہ راون کون کہیں گے, یہ گرو لوگ ودوان پنڈت آچاریہ سرو کا سدگتی داتا تو ایک ہی باپ ہے. سدگتی کرتے ہیں تو آدھا کلپ تم سدگتی میں رہتے ہو. تم کیا, کس کو کہا یہ, تم کس کو کہا؟ آدھا کلپ تم سدگتی میں رہتے ہو, وہ دھرم والے نہیں. یہ نہیں رہتے ہیں, کون رہتے ہیں ہے؟ نہیں, جو سوری ونشی بچے ہیں وہ آدھا کلپ سدگتی میں رہتے ہیں. جو پکے پکے سوری ونشی نہیں ہے سوری کو فالو نہیں کرتے ہیں, چندرما کو فالو کرتے ہیں. چندر ونشی بن گئے پھر کبھی سوری ونشی بنے ہی نہیں, وہ پھر کم کلاؤں کے نارائن اور ان کی فالوور پرجا بنے گی یا سولہ کلا سمپورن نارائن بنیں گے ہے؟ کم کلاؤں والے نارائن یا ان کی پرجا بن پڑیں گے, وہ پھر آدھا کلپ رہیں گے. وہ بھی آدھا کلپ نئی دنیا میں نہیں رہیں گے. تو آدھا کلپ تو تم سدگتی میں رہتے ہو, کہہ کر کے کیا پکا کر دیا ہے؟ جو باپ کے سنمکھ بیٹھنے والے سنمکھ سننے والے بچے ہیں، اندر سے بھی سنمکھ اور باہر سے بھی سنمکھ، وہ آدھا کلپ سدگتی میں رہتے ہیں۔ باپ نے سمجھایا ہے کہ جو بھی دھرم جس سمے استھاپن ہونا ہے وہ اسی سمے استھاپن ہوگا، نہ پہلے اور نہ بعد میں۔ جو اور دھرموں میں کنورٹ ہو گئے ہیں وہ بھی اپنے اپنے ٹائم پر نکل آویں گے۔ پہلے ان دھرموں کے سرپرست نکلیں گے یا فالوور نکلیں گے؟ جو سرپرست بڑے بڑے ہیں وہ پہلے نکلیں گے۔ تم جانتے ہو کہ دیوی دیوتا دھرم میں تو اتھا سکھ ہے، منشیوں کو سمجھانے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ اتھا سکھ سرشٹی کے آدھی کال میں تھے، کتنی مشکل سی یہ باتیں سمجھتے ہیں۔ یہ تمہارا دیوی جھاڑ بڑا ضرور ہونا ہے، ابھی تو چھوٹا جھاڑ ہے، تو تھوڑے پتے ہیں یا زیادہ ہیں؟ کیوں ہیں تھوڑے؟ کیونکہ چھوٹے جھاڑ کو طوفان جاستی لگتے ہیں، طوفان جاستی لگنے کے کارن جھاڑ کا پنپنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے بچے ہیں جو چلتے چلتے گر پڑتے ہیں، پھر بھی باپ تو آتھت دیتے ہیں، جو ایک بار برہمن بن گیا وہ انت میں آوے گا، ضرور آوے گا۔ برہمن پنے کا پرشارتھ ویرتھ نہیں جا سکتا۔ ایک بار بھی اگر گیان سنا تو ان کو پھل ضرور ملنا ہے، پرنتو پد کم ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ کیا نیم بتایا ہے؟ نیم کیا بتایا اونچ پد اور نیچ پد کا؟ ہے ज्ञान तो सुने, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद फिर जिनका गिरना न हो, अगर गिर पड़ते हैं छोड़कर चले जाते हैं तो प्रजापद में चले जाएंगे। तो जो पहले गिरेंगे جو پہلے پہلے چھوڑیں گے تو ان کی گتی کیا ہوگی؟ ہے اونچ پد پاویں گے یا نیچ پد پاویں گے؟ ہے نیچ پد پاویں گے۔ پہلے مانے کیا ہے؟ آدھ میں۔ آدھ مانے کب ہے؟ آدھ مانے یگ کے آرمبھ میں۔ اچھا ابھی تو بولا تم بچے باپ کے سنمکھ آ کر سنتے ہو، تو تم پورے 84 جنم زیادہ سے زیادہ سکھ بھوگتے ہو، اور دھرم والے آدھا سکھ آدھا دکھ بھوگتے۔ تو آدھی میں باپ تھا کیا؟ جب باپ کی پہچان ہی نہیں ملی تو چھوڑنے اور گرہن کرنے اس سے پد کیوں کم ہو جاوے گا؟ پد دینے والا باپ ہے یا کوئی دوسرا ہے؟ باپ ہی پد دینے والا ہے. ابھی تم بچوں کو سریمت پر چلنا ہے. کیا مطلب؟ وانی تو 68 کی ہے, اس سمے سریمت کا پتا ہے کیا؟ اڑسٹھ میں پتا تھا نہیں تھا؟ کیوں؟ برہمن کی دنیا میں سن 68 میں دادا لیکھ راج عرف برہما بابا اونچتے اونچے نہیں تھے کیا؟ ارے اونچتے اونچے نہیں تھے ہیں؟ 68 کی بات کر رہے ہیں, اس سے بعد کی بات نہیں ہے. ہاں ماں کا پاٹ تھا لیکن ماں اونچتے اونچی تھی نا, لیکن کس کے سامنے؟ بچوں کے سامنے. بچوں کو تو ورثہ نہیں ملتا, بچوں کو ورثہ کم ملتا ہے. جب بچے بڑے ہو جاویں, سمجھدار ہو جاویں, پڑھائی میں فائنل ایگزام میں پاس ہو جاوے تب ہی تو ورثہ ملتا ہے. تو بتایا ابھی تم بچوں کو سریمت پر چلنا ہے, چل نہیں رہے ہو. کیا بولا؟ چلنا ہے, مانے کب چلنا ہے؟ آگے آنے والے بھوشیہ میں جب تم باپ کو پہچانیں گے کہ اونچتے اونچے باپ کا پارٹ کون ہے, کہاں ہے, تب کی بات بتائی کہ تم بچوں کو سریمت پر چلنا ہے, اور ایسے بچوں سے تم کیوں کہا پھر؟ وہ بچے سامنے تھے کیا باپ کے؟ ان بچوں کو سپریم سول باپ ایمرج کر کے کہتے تھے کہ تم کو آگے آنے والے بھوشیہ میں سریمت پر چلنا ہے, باقی آشیرواد کی بات نہیں ہے. کہ وردان دے دیں گے, آشیرواد دے دیں گے. گلارتن میں آتے ہیں تو وردان ملتے ہیں نا, وردان محنت سے ملتا ہے یا سوتے ہی مل جاتا ہے؟ محنت سے ملتا ہے وردان, تو سوتے ہی مل جاتا ہے. اور پڑھائی میں تو محنت کرنی پڑتی ہے. تو بچوں کو راستہ تو بتا دیا ہے, باپ کو یاد کرتے رہو. آتما سمجھتی بھی ہے کہ ہمیں باپ کو یاد کرنا ہے, اور باپ ہی پاون بنانے والا ہے. اور کوئی منشی ماتر پاون بنانے والا نہیں ہے. ایسے کیوں بولا ہے؟ اکیلا چنا باہر پھوڑ سکتا ہے کیا؟ اکیلا سارا کام کر لے گا؟ 500 کروڑ کو پاون بنا لے گا کیا؟ نہیں, اس کاری میں باپ کے بچے ہی سہیوگی بنتے ہیں. जो बाप के बच्चे नहीं होते हैं और धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाते हैं, वो बाप की ग्लानि करते हैं, खास इस बात में कि बाप जिसको ये बाप पतित पावन कहते हैं वो वास्तव में बाप नहीं है, इसी बात में ग्लानि करते हैं। और तुम बच्चे कैसे सहयोगी बनते हो, तुम बाप की महिमा करते हो और महिमा करने से तुम बाप के सहयोगी बन जाते हो। भगवान वाच है ना, क्या है कि मां में एकम याद करो, मैं एक ही हूं जो पतितों को पावन बनाने वाला हूं, कोई दूसरा इस संसार में नहीं है पर्सनालिटी जो पतितों को पावन बनावे। इस बात की गहराई को तुम बच्चे समझते हो, तो लोगों को समझाते हो कि ये भगवान ने बोला है कि मां एकम याद करो, इसमें गस्सा मारने की बात नहीं है, ये साधु संत आदि तो सभी झूठ बोलते रहते हैं। अपन को कहते हैं शिवो अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मेरे में भगवान आता है, ये अपन को श्री श्री 108 कहलाए भी नहीं सकते हैं, बनना तो दूर की बात। भगवान अपन को श्री श्री 108 कहलाने का अधिकारी है, क्यों? क्योंकि भगवान ही है जो 108 श्रेष्ठ आत्माओं को राजपद का जन्म जन्मांतर का वर्षा देता है। वो श्रेष्ठ आत्माएं संसार के हर धर्म में आज भी माला में स्मृति की जाती है। तो मम्मा ने सभी को पत्र लिखा था कि तुम जो अपन को टाइटल देते हो श्री श्री 1008 श्री सच्चिदानंद स्वामी वगैरह वगैरह श्री शंकराचार्य वगैरह वगैरह, ये तुम्हारे झूठे टाइटल हैं, तुमने कोई भी 108 श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ नहीं बनाया संसार के सामने, फिर भी तुमने अपने ऊपर टाइटल रखवा लिया श्री श्री 108 श्री श्री 1008। तो ऐसा पत्र लिखने से मम्मा के द्वारा वो और ही अहंकार में आ गए। बोले हमसे आकर के शास्त्रार्थ करो, वाद विवाद करो। हम साबित करेंगे कि हम इस दुनिया में बहुत बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं। अभी बाप तो तुम बच्चों को बताते हैं कि ये तो शास्त्राद पढ़ते पढ़ते बहुत ही नीचे गिर गए हैं, वो तो समझते हैं कि हम मोक्ष को पावेंगे। मोक्ष को पावेंगे अर्थात इस दुनिया से सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसों ऐसों को समझाना है جو دنیا میں بہت بڑے بڑے مانے جاتے ہیں، پرنتو یہ سمجھانے دینے میں جاتی تک تک نہیں کرنا ہے، کیونکہ منشی تو اکثر کر کے پتھر بدھی ہیں، تو پتھر بدھیوں کو پارس بدھی بنانے کے لیے باپ ترکیب دیتے ہیں، کیا پتھر کو پارس بدھی بنانے کے لیے کیا ترکیب دیتے ہیں کہ مجھ باپ کو یاد کرو، کیا آتما جنم جنمانتر شریر کے جنم لیتے لیتے، شریر کو مٹی کہا جاتا ہے، ہے مٹی کے پتلے میں آتما جنم لیتے لیتے مٹی سے پتھر بدھی بن گئی، اپن کو آتما کیا سمجھنے لگ پڑی، دیہ ارتھات مٹی اور مٹی سے بھی بڑھ کر کے پتھر بن گئی۔ ابھی باپ کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو، جو کبھی بھی دیہ کے سنگ کے رنگ میں آ کر مٹی اتھوا پتھر بدھی نہیں بنتا ہے، جیسے کو یاد کریں گے ویسے ہی بن جائیں گے۔ میں اتی سوکشم ہوں، سوکشم کو یاد کریں گے تو سوکشم بدھی بنیں گے، اور آتمائیں اتنی سوکشم بدھی نہیں ہے، کیونکہ سات جنم مرن کے چکر میں آتی ہیں، تو میں ہی پتت پاون ہوں، اور کوئی بھی منشی ماتر پتت پاون نہیں ہے، میں ہی سرو شکتیوان ہوں۔ جو جتنا سوکشم ہوگا اتنا جاستی طاقتور ہوگا، یا بڑا ہوگا تو طاقتور ہوگا، ہے جتنا سوکشم بدھی ہوگا اتنا ہی جاستی پاورفل ہوگا، تو میں سرو شکتیوان ہوں۔ تم سنیاسیوں کو بول سکتے ہو کہ تمہارا تو دھرم ہی الگ ہے، کیا الگ ہے، کیا دھرم الگ ہے، سنیاس دھرم ہے، سم منے سمپورن، نیاس منے تیاگ کرنے والا، کیا تم تو اس دنیا کی ہر چیز کا تیاگ کرنے والے دھرم کو اپنانے والے ہو۔ ہمارا سنیاس دھرم نہیں ہے، ہمارا تو پروتی مارگ کا دھرم ہے، پروتی میں ہم اس دنیا کو تچھ نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا تامسی بنتی ہے ہمارے کارن، ہم اپن کو تامسی سے ساتوک بناویں گے تو دنیا بھی ساتوک بن جائے گی، تو دنیا تیاگنے یوگی نہیں ہے، دنیا تو ساتوک دنیا ہم کو گرہن کرنے یوگی ہے۔ ان کو بتاؤ تم تو شنکراچاری کے فالوور ہو، شنکراچاری تو بعد میں آتا ہے، शुरू में तो जरूर एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। इसलिए शंकराचार्य के फॉलोअर सभी सन्यासी ओम नमो नारायण कहते हैं। तो शंकराचार्य पहले हुआ या नारायण पहले हुआ? नारायण तो सत्ययुग के आदि में, शंकराचार्य तो कलयुग के आदि में। कलयुग तो कलाहीन युग होता है और सत्ययुग तो 16 कला संपूर्ण युग होता है। तो बताओ, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो नारायण का राज्य था, और नारायण तो प्रवृत्ति मार्ग के थे, तुम तो निवृत्ति मार्ग के हो। सारी दुनिया से तुम्हारी निवृत्ति हो जाती है, सारी दुनिया को तुम क्षणिक क्षणिक कहते हो, मिथ्या मिथ्या, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम मिथ्या मिथ्या। वास्तव में ये सारी दुनिया में सारा ही ड्रामा चलता है। कहाँ चलता है? कोई बाहर की दुनिया में चलता है, इसी दुनिया इसी रंगमंच पर सारा ड्रामा बना हुआ है। ये ड्रामा कल्याणकारी है या मिथ्या है? कल्याणकारी ड्रामा है। हाँ, जब हम तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम दुखी होते हैं। अभी बाप ज्ञान देने वाला हमको मिल गया है, इसलिए इस तामसी दुखी दुनिया में भी हम अपने को क्या बना सकते हैं? दुखी से सुखी बना सकते हैं। ओम शांति।